मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे एक दो बातें शुरुआत में आपसे कहनी हैं। पहली बात तो यह है कि अभी तक करंट अफेयर्स के तहत जितने भी खबरें हो सकती थी, घटनाएं हो सकती थी, जो मेरे पास बची हुई थी, आज लगभग लगभग वे सब पूरी हो जाएंगी। यानी कि आज के बाद जो हम लोग बातें करेंगे वो बिल्कुल करंट अफेयर्स पर ही होंगी, पिछले दिनों की बातें नहीं होंगी, आज वह पूरा हो जाएगा। दूसरी बात कि मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक आप सब मुझे सुझाएं कि प्री एग्जामिनेशन की तैयारी से संबंधित किस किस तरह की समस्याएं आप महसूस करते हैं। हो सकता है कि मैं उन समस्याओं पर कुछ बात करके आपको समाधान सुझा सकूं, तो इस बात के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों में से बहुतों ने बहुत सारे विषय सुझाए हैं। मैंने उन सब की लिस्टिंग कर ली है और मैं क्रमशः धीरे धीरे अब इन पर भी बातें करूंगा। यानी कि अब हम लोग जब भी समय मिलेगा तो प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पर डेफिनेटली बातें करेंगे। हो सकता है कि मेरी इन बातों का थोड़ा सा सहयोग आपकी सफलता में हो जाए, हु नोस। ये दो बातें मुझे बतानी थी। आज मैं एक खबर से शुरुआत कर रहा हूं। एक दो खबरें जो पहले की बची हुई हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा और यदि फिर वक्त बच गया तब फिर मैं प्री एग्जामिनेशन पर बात करना आज से ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम हो उसे तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। एक खबर आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो भूटान नरेश हैं, भूटान नरेश हमारे देश की यात्रा पर आ रहे हैं। भूटान बहुत छोटा सा देश है लेकिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो खासकर जो हमारे और भूटान के बीच में बातचीत होगी उस पर आपको ध्यान देना है। मेंस में जब इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत पूछे गए प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को लेकर के होते हैं, और खासकर यदि उस बीच में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो तो। ठीक है, भारत और भूटान के बीच में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी है कि हम ये मानकर चलें कि इस बार के प्री एग्जामिनेशन में उसकी संभावना है, लेकिन एक सैनिक की तरह आपको तैयार तो रहना ही चाहिए। हो सकता है कि सीधे सीधे भूटान पर प्रश्न न पूछा जाए लेकिन जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसमें खासकर भूटान पर जो अभी आपकी तैयारी है या जो जानकारी है वो आपकी मदद कर सके, आपको कुछ माइलेज दिला सके। तो दोस्तों, आपको इस घटना पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जब भी हमारे और उनके बीच में बातचीत होती है, एडिटोरियल कमेंट्स आर्टिकल्स आते हैं, उन्हें आप थोड़ा सा पढ़िए, देखिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपको चाहिए कि आप उन्हें नोट भी कर लें ताकि ये जो टॉपिक है आपका अपडेट हो सके। भूटान के बारे में हम लोग बकायदे ऑनलाइन लेक्चर्स में बात कर चुके हैं भारत और भूटान के संबंधों को लेकर के, इसीलिए उसे दोहराना मैं यहां जरूरी नहीं समझ रहा हूं, लेकिन एक दो बातें जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं वो जरूर मैं यहां बताना चाहूंगा, खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट नहीं है। मैप में आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भूटान कहां है, और शायद आपको मालूम भी होगा। नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे तो अगर आप असम से सिक्किम के लिए जाएंगे तो लेफ्ट साइड से ही एक रास्ता कट जाता है जो आपको भूटान ले जाता है। जी हां, आप भूटान बकायदे बाई रोड भी पहुंच सकते हैं, बहुत दूर नहीं है, और बहुत से टूरिस्ट जब भूटान के लिए जाते हैं तो बाई रोड ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको फिर पहाड़ी और वो हिमालय के सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। अगर मैंने सिक्किम और असम की बात कही है इसका मतलब है कि जो भूटान है वो ईस्ट हिमालय में है, ईस्ट हिमालय में, इसीलिए उसे बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ हिमालयन कहा जाता है। बुद्धिस्ट किंगडम अगर आप कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि वहां बौद्ध धर्म की मान्यता है, वहां के जो लोग हैं वो बौद्ध हैं, वहां के लोग बौद्ध हैं, तो स्वाभाविक है कि भारत के साथ जो भूटान के संबंध होंगे, आप इसे जोड़ करके देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये संबंध अब केवल राजनयिक संबंध नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। और याद रखिए कि जो सांस्कृतिक संबंध होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, वो उसे बहुत ज्यादा मजबूत बना देते हैं। ये बात आपको इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि पिछले कुछ समय से चीन लगातार भूटान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये भारत के लिए फिर से एक चैलेंज है, चेतावनी है कि भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। वैसे आप जानते हैं कि भारत ने अपनी पॉलिसी बना रखी है नेबरहुड फर्स्ट, हमारे यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो सबसे पहले हैं, और भारत इस पर काम भी कर रहा है। तो हमारे संबंधों को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के हम चिंतित हों, लेकिन अगर हम ढिलाई छोड़ेंगे तो डेफिनेटली चीन उसका फायदा उठाएगा। जब आप मैप में देखेंगे तो भूटान को आप साउथ एशिया में पाएंगे, ये साउथ एशिया में है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां की जो करेंसी है इंडियन रूपी ही यहां चलती है। राजधानी थिम्पू है और आबादी बहुत कम है, लगभग लगभग मैं समझता हूं कि 8 लाख के करीब। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहां पानी के झरने और इस तरह से बहुत हैं, और उनसे जल विद्युत बहुत ज्यादा उत्पादित की जाती है। और खासकर जो भूटान है इस मायने में विश्व में प्रसिद्ध है कि उसने जो आपने ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स के बारे में कुछ दिनों पहले सुना है, इसी तरह के अपनी तरफ से भूटान ने एक नया इंडेक्स तैयार किया है। बेहतर होगा कि मैं उसका नाम न बताऊं, इसी बहाने आप थोड़ा सा सर्च करना सीखेंगे उस इंडेक्स का नाम क्या है। आप बेहतर होगा कि आप ढूंढें और फिर देखें कि उसमें मानक क्या क्या बताए गए हैं। वे मानक नहीं है जो हमने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में देखे हैं, वहां आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि खासकर मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर में इसकी अलग से प्रशंसा की है, अलग से उल्लेख किया है और थोड़े से डिटेल में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, भारत भूटान संबंध, और प्लीज इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक दो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है उन पर आ रहा हूं, जो पहले आई थी लेकिन अभी तक मेरे पास बची हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, और यह खासकर ग्राउंड वाटर के ऊपर है, यानी जो भूमिगत जल है उसके ऊपर है। जो भूमिगत जल होता है इसे आप एक प्रकार से फ्रेश वाटर भी कह सकते हैं, बिल्कुल ताजा पानी, बिल्कुल स्वच्छ पानी। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं 2-3 बातें, बस वही मैं आपके सामने रख रहा हूं जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमसे कहा है। पहली बात कि जो हमारा इरिगेशन होता है, हमारी जो सिंचाई की जो जरूरत है, उस जरूरत का 67% भाग ग्राउंड वाटर से पूरा होता है, यानी कि सिंचाई की जो सुविधा है 67% ग्राउंड वाटर की है, भूमिगत जल से है। आप देखते हैं खासकर जब आप बिजली के जरिए भूमिगत पानी को निकालते हैं तो वो भूमिगत पानी ही होता है, भूमिगत जल 67%। और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, जो हमारा पेय जल है, उसकी 80% पूर्ति ग्राउंड वाटर से होती है, ठीक है, 67% इरिगेशन से और 80% ड्रिंकिंग वाटर की। दोस्तों, अब आप देखें कि इसमें जो सुझाया गया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, अगर हम इरिगेशन की बात करें तो उस इरिगेशन में जो 60% जो इरिगेशन की जो सप्लाई है वो केवल 2 तरह के खाद्यान्नों के लिए हो जाती, क्रॉप्स के लिए हो जाती। ज्यादा अच्छा होगा कि हम फसल शब्द का इस्तेमाल करें। 2 तरह की फसलों में 60% पानी चला जाता है, और ये जो 2 फसलें हैं ये हैं धान, जिसे आप चावल भी कह देते हैं, और दूसरा है गन्ना, सुगर केन। और आपको मालूम है कि ये दोनों फसलें पानी का बहुत ज्यादा उपभोग करती हैं, इसलिए बीच बीच में आपको ये पढ़ने को मिलता होगा कि सरकार इस कोशिश में है कि जो इन फसलों का उत्पादन किया जाता है इसकी जगह पर दूसरे फसलों को बढ़ावा दिया जाए ताकि पानी की बचत हो सके। और इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग करते हैं, और यह भी बताया गया है कि ऐसा क्यों है। केवल पंजाब और हरियाणा के संदर्भ नहीं, पूरे देश के संदर्भ में। पहली बात कि ज्यादातर लोग धान की खेती करते हैं, सुगर खेन की खेती करते हैं, और इनकी खेती करने के पीछे कारण यह है कि सरकार ने इनका न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रखा है, तो खेती करने वाले जो किसान होते हैं उनको नुकसान नहीं हो पाता। जो दूसरे उत्पादन है, पता लगा मार्केट में उनकी कीमतें इतनी ज्यादा गिर गई हैं कि वो किसानों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो इसमें वो थोड़ी सी सुरक्षा, अपने लिए थोड़ी सी सुरक्षा महसूस करते हैं, इसीलिए इसकी ज्यादा खेती की जा रही है। दूसरा यह है कि बहुत से राज्य जो इलेक्ट्रिसिटी है कुछ तो फ्री में देते हैं, कुछ उस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, तो किसानों को लगता है यार बिजली का बिल तो उतना आएगा नहीं, तो ग्राउंड वाटर को ही निकालो, तो भूमिगत जल को ज्यादा से ज्यादा फिर बिजली के माध्यम से निकाल करके अपना सिंचाई करने लगते हैं। इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो ये कह रही है कि सरकार को अपनी इन नीतियों पर भी विचार करना चाहिए ताकि भूमिगत जल का सही उपयोग किया जा सके। दोस्तों, एक जो दूसरी खबर है जो छोटी सी ही है और खासकर जल को ही लेकर के है, लेकिन ग्राउंड वाटर को लेकर के नहीं, वो है यूएनओ की एक रिपोर्ट। यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि अभी तक दुनिया की जो आबादी है उसकी 26% आबादी तक सुरक्षित पेयजल नहीं पहुंचाया जा रहा है। यानी कह लीजिए कि 26% जो पॉपुलेशन है उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही है, और वो ये है कि जो एक बुनियादी जो स्वच्छता होती है उस बुनियादी स्वच्छता तक 46% लोगों की पहुंच नहीं है। यानी कि वो आप यूं कह लीजिए कि गंदे वातावरण में रह रहे हैं, जो स्वच्छता होनी चाहिए आसपास एक जीवन के लिए वो नहीं मिल पा रही है। तो 26% तक जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं पहुंच रहा है, 46% तक जो बुनियादी स्वच्छता है वो हम पूरा नहीं करा पाए हैं। मैं यहां एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, विशेष रूप से आप इसे रिवाइज कर करके अपने दिमाग में नोट भी कर लें, और वो ये कि संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा हुई थी 2010 में, उसमें जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था उस प्रस्ताव में जो पीने का साफ पानी और स्वच्छता है, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, पीने का साफ पानी और स्वच्छता, इसे मानवाधिकार का दर्जा दिया गया था कि यह मनुष्य का अधिकार है। तो ये 2010 की बात है, हम रिपोर्ट देख रहे हैं 2022 की, तो 12 सालों में भी हम अपने मनुष्य को उसका यह अधिकार नहीं दिला पाए हैं। यह इस आंकड़े का आप यूं कह लीजिए कि निष्कर्ष है। तो दोस्तों, जो पीछे की जो घटनाएं और खबरें जो बची हुई थी, रिपोर्ट्स बची हुई थी, वो सब आज से पूरी हो गई हैं। अब हम लोग आगे जो भी घटनाएं घटित होंगी उन पर बातें करेंगे, और डेफिनेटली प्री एग्जामिनेशन पर तो बात करना शुरू कर ही देंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं महेंद्र चावड़ा जोधपुर से और विवेक वर्मा, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।